ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
श्रीमद्भागवतम। अच्छा, मैं दूसरा पढ़ा था, इतना गलत पढ़ लिया था। अच्छा, कोई बात नहीं। श्रीमद्भागवतम छठवां स्कंध अध्याय 4 श्लोक संख्या 23 है ना, 24 है? अच्छा 24 है। ना नहीं, यस्य जिसका सख्यम मैत्री भाव पुरुषा जीव अवैति जानता है सख्यु परम मित्र का सखा मित्र बसना रहते हुए समसता साथ रहने वाले के पूरे शरीर में अस्मिन यह गुणा इंद्रियां अनुभूति का विषय यथा जिस तरह गुणिनः उसी इंद्रियों का व्यक्त दृष्टे जो भौतिक जगत का निरीक्षण करता है तसौ उस महा ईशाय परम नियंता को नमस्करोमि, मैं नमस्कार करता हूँ। नयस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्ययु नयस्य सख्यं नयस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्यौ सखा वसन संवत पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमोस्करामि। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जिस तरह इंद्रिय विषय रूप स्वाद स्पर्श गंध तथा ध्वनि या नहीं समझे जा सकते कि इंद्रियां उनकी अनुभूति किस तरह करती हैं, उसी तरह बद्ध आत्मा यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है यह नहीं समझ सकता कि भौतिक सृष्टि के स्वामी परम आध्यात्मिक पुरुष किस तरह उनकी इंद्रियों का निर्देशन देते हैं। मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो परम नियंता हैं। तात्पर्य रूपा जी के द्वारा व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा एक साथ शरीर के भीतर निवास करते हैं, इसकी पुष्टि उपनिषदों में इस उपमा से की जाती है कि दो मित्र पक्षी एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं। एक पक्षी उसका वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा एकमात्र साक्षी है और उसका निर्देशन करता है। यद्यपि विशिष्ट जीव जिनकी उपमा फल खा रहे पक्षी से दी गई है, अपने मित्र परमात्मा के साथ बैठा हुआ है, किंतु व्यष्टि जीव उसे देख नहीं सकता। वास्तव में वस्तुतः परमात्मा इंद्रियों विषय के भोग में उनकी इंद्रियों का काम काज में निर्देश देते रहते हैं, किंतु जिस तरह ये इंद्रिय विषय इंद्रियों को नहीं देख सकते, उसी तरह बद्धात्मा उस निर्देशनकारी आत्मा को नहीं देख सकता। बद्धात्मा के कई इच्छाएं होती हैं और परमात्मा उन्हें पूरी करता है, किंतु बद्धात्मा उस परमात्मा को देख नहीं सकता, देख नहीं पाता। इस तरह दक्ष प्रजापति परमात्मा को नमस्कार करते हैं, यद्यपि वे उन्हें देख पाने में असमर्थ हैं। अन्य उदाहरण यह है कि यद्यपि सामान्य नागरिक सरकार के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु वे यह नहीं समझ सकते कि वे किस तरह समित शासित हो रहे हैं या किस सरकार क्या है। इस प्रसंग में मध्वाचार्य स्कंद पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। यथा राज्ञ प्रिय प्रियत्वं तु भृत्या वेदेन चात्मनः तथा जीवो न यत्सख्यं केचित् तस्मै नमस्तुते। जिस तरह किसी बृहद स्थान के विभिन्न विभागों के अनेकों सेवक उस सर्वोच्च प्रबंध निर्देशक को नहीं देख पाते जिसे अधीन वे कार्य करते हैं, उसी तरह बद्धात्माएं अपने शरीर के भीतर बैठे हुए परमात्मा मित्र को नहीं देख पाते। इसलिए हम उस परम को नमस्कार करते हैं जो हमारी भौतिक आँखों से अदृश्य है। श्री प्रभुपाद जी महाराज की। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह प्रार्थना है ये। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, भगवान इंद्रियों से परे हैं। हमारी ये भौतिक जो इंद्रियां हैं, ये भौतिक वस्तु को समझने में भी असमर्थ है। भौतिक चीज को भी बढ़िया से नहीं समझ पाती हमारी इंद्रियां। यहां तो आध्यात्मिक की बात की जा रही है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है, इतना इनपरफेक्ट है कि भगवान हमारे अंदर ही बैठे हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ घूमते हैं। यानी यदि आप सचमुच में समझना चाहें तो इनके बिना शरीर चल नहीं सकता है। यदि भगवान शरीर के भीतर ना हो तो हमारे पाँव में वो ताकत शक्ति नहीं है कि पाँव हिल सके। यदि परमात्मा अंदर ना बैठे हों, हमें निर्देशन ना करते हों तो हमारे आंखों कानों में शक्ति नहीं कि वो सुन ले और वो देख ले। भगवान निरंतर हमारी सहायता करते हैं क्योंकि सर्वव्यापी हैं। और प्रभुपाद जी बार बार अपने तात्पर्य में समझाते हैं हम सबको कि कृष्ण इज द वेरी नियर एंड वेरी डियर। भगवान बहुत नज़दीक हैं और वे हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे के चाहने वाले हैं, हम उन्हीं के संतान हैं, हम उन्हीं के पुत्र हैं, तभी तो हमारे साथ रहते हैं, तभी तो भगवान ने सब कुछ हमें फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। आप उदाहरण से समझें, दिन में इतनी बड़ी लाइट जली है सूर्य के रूप में, इसका कोई पैसा देता है? और इसके बिना बहुत कुछ चीज़ नहीं हो सकता है, इतनी बड़ी लाइट है, ये पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। घर में छोटी सी लाइट जलाओ उसका बड़ा भारी बिल आता है, लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी लाइट जला करके छोड़ दिया, हमने इस पर विचार भी नहीं किया, अरे नमस्कार भी नहीं करते हैं कि आपने लाइट दिया है मुझे। भगवान हमें चाहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, केवल मनुष्य देहधारी जीव को ही नहीं बल्कि कीट से लेकर के पतंग से लेकर के ब्रह्मा तक सबका पोषण करते हैं भगवान, सबका देखभाल करते हैं भगवान। हमारी इंद्रियां अत्यंत अपूर्ण है, पेट में भोजन डालते हैं ये पता नहीं चलता कहाँ गया, कैसे एनर्जी बना, कैसे मलमूत्र बना, ये हम सबको कुछ पता नहीं, हमारे शरीर में ही है, इतना इनपरफेक्ट है। पेट में भोजन डाल देते हैं, प्रसाद को डाल देते हैं और परमात्मा अंदर बैठे इसको पचा देता है बिना पैसा का। कुछ लोग तो बहुत खाते हैं, खाते ही रहते हैं, फिर भी भगवान उसको पचा देते हैं, खाओ। संसार में जितने जीव हैं सबको प्रभु ने रोटी की व्यवस्था की है, सबका पेट भर करके सुलाता है प्रभु, और जब रात भर सो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, हम सुसुप्त अवस्था में हो जाते हैं, तो भगवान हमारे रोटी को पचा करके और रात भर नाक में हवा फेंकता है और निकालता है, फेंकता है और निकालता है। थोड़ा सोचो, विचार करो कि सोते सोते यदि 10-20 श्वास कम हो जाए तो हम उठ पाएंगे सीधे हॉस्पिटल में? और वो जो आपको ऑक्सीजन लगेगा हॉस्पिटल में उसका बड़ा भारी बिल आएगा आपको, और ये हवा के रूप में भगवान ने आपको फ्री ऑफ चार्ज सब कुछ देते हैं। मनुष्य शरीर भगवान ने इसलिए बनाया कि जीव हमें समझे, हमारे से जो सनातन संबंध है जीव का, जो शाश्वत दिव्य हमारे से जो उसका संबंध है उसको हम समझें। आप सब तो वैष्णव हैं, आपके बिना तो कुछ संभव है ही नहीं, आप तो 3 बजे से लगे हो भगवान के साथ। ये तो कथा जो है बाहर के लोगों को सुनना चाहिए कि भगवान कितने कृपालु हैं। हमारी इंद्रियां रूप स्वाद स्पर्श गंध और ध्वनि माने शब्द, ये 5 ज्ञान इंद्रियों का वर्णन करते हैं। इसमें शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय हैं और 1 मणि महाराज है जो सबको घुमाते हैं, जहाँ मन कहता है वहीं चलता है। आप सबके लिए नहीं है, जैसे श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी के विषय में आया हुआ है, सुदामा जी अपने इंद्रियों के मालिक थे। आज के संसार के लोग अपने इंद्रियों के दास हैं, सेवक हैं, सुदामा जी इंद्रियों के मालिक थे। सुदामा के आंख जहां देखना चाहती थी वहां सुदामा नहीं देखते थे, जहां सुदामा जी देखना चाहते थे वहां आंख देखती थी। महात्मा सुदामा जी जहां पैर जाना चाहता था वहां नहीं जाते थे, जहां सुदामा जी जाना चाहते थे वहां पैर चलता था। कंट्रोल था ना पूरा, ऐसा जीवन चरित्र था। यदि आप भी भगवान से, भगवान के मित्र बनना चाहते हो, पैर इत्यादि धुलाना चाहते हो तो ऐसा ही करो। सुदामा जी के पैरों को भगवान ने द्वारका में धोया था, अभिषेक कर दिया था पूरा। सुदामा जी ने कोई रिश्वत नहीं दिया, कोई पैसे नहीं दिया। सुदामा जी ने केवल भगवान की आज्ञा को पालन किया। अब यहाँ क्या है कि यहाँ जहाँ हमारी आंखें कहती वहीं मन चल देता है। इंद्रियों का सबसे निकट संबंध है मन से। मन के बिना कोई भी इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती हैं। यदि आप कथा में बैठे हैं और मन यदि कथा में नहीं है, मन कहीं और है, तो इंद्रियां भी साथ में जाती हैं। आप कथा में बैठे हैं, पूरी कथा समाप्त हो जाएगी। यदि मन ठीक से नहीं बैठा है तो कान सुनेगा जरूर, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं होगा इसमें। इसलिए तो भगवान ने दो कान बनाया है ना, एक कान से भी सुन सकते थे हम लोग। दो कान बनाया कि इधर से सुनो, इधर से बाहर निकाल दो। बड़े सुंदर ढंग से इसे सुनना चाहिए। श्रुति है ना, इसको सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि पहले के लोग केवल सुनते थे, केवल श्रवण करते थे, और श्रवण मात्र से उनको संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान होता था। सुनते थे, नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रतिदिन भगवान की कथा का सेवन करते थे। उसके रुचि पूर्वक, रुचि बढ़ा करके, अपने आसक्ति को बढ़ा करके, प्रेम को बढ़ा करके प्रभु के लीला कथा में निरंतर निमग्न रहते थे, सुनते थे। सब आँख, आँख से रूप देखता है व्यक्ति। प्रभुपाद इसमें कहते हैं आँख से रूप है, जिह्वा से स्वाद आता है, त्वचा से स्पर्श आता है, और गंध नाक मशीन बना है, ये नाक से गंध लेते हैं, और कान से आकाशवाणी ध्वनि सुनते हैं। इन इंद्रियों को भक्ति मार्ग से भगवान के सेवा के द्वारा शुद्ध करके प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, इसमें कहते हैं कि परमात्मा अंदर ही बैठा है, लेकिन बद्ध जीव परमात्मा को देख नहीं पाता है। बहुत नज़दीक बैठे हैं, बहुत नज़दीक हैं, हमारे साथ ही हैं, हमारे जीवों के मित्र हैं वो। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के मित्र है परमात्मा, परंतु उनको हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, क्योंकि इंद्रियों से प्रभु की सेवा नहीं किया। क्या करना चाहिए? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमम। अपने ऋषिकेण यानी ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है, जो इंद्रियों का मालिक है परमात्मा, अपने इन अपूर्ण इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए। इसीलिए महात्मा अमरीश जी ने क्या किया, सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, अपने मन को भगवान के पाद पद्मों में लगा दिया। श्रुति चकारम सतकथा दयो, और अपने कान को उन्होंने भगवान की दिव्य कथाओं में लगा दिया। दिव्य कथा डालते थे, बड़े ध्यान से ही सुनना चाहिए, भगवान के दिव्य कथा को डालना चाहिए, एक शब्द भी बाहर न जाए। एक बार ना एक संत कथा बता रहे थे, श्रोता के ऊपर में है। एक बार प्रदर्शनी लगा हुआ था, बड़ा सुंदर और बड़ा ही सुंदर मूर्तिकार ने, कलाकार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई थी। लोग देखते थे, चले जाते थे। वशिष्ठ देव का मूर्ति था, आते थे लोग देखते थे। किसी ने पूछा कि आपने मूर्ति बनाई है? बोले हाँ। क्या दाम रखे हैं आप? बोले कि दो मूर्ति थी ना वहाँ, बोले एक मूर्ति का दाम है 500 रुपया और एक मूर्ति का दाम है 1,00,000 रुपया। किसी ने पूछा कि जो 1,00,000 रुपये की मूर्ति बनी है वो सोने की है क्या? बोले नहीं नहीं, बनाने वाले ने कहा कि नहीं, दोनों एक ही धातु का है, एक ही वजन का है, बनाने वाला भी एक ही व्यक्ति है, लेकिन एक 500 का है और एक 1,00,000 का है। इसमें अब देखे, देखने वाले भी चकरा गया कि भाई देखने में सामान्य है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है इसमें, क्या कला है इसमें, किसी ने अंदाज नहीं लगा सका। एक सत्संगी व्यक्ति था, जैसे आप लोग सत्संग करते हैं, सत्संगी व्यक्ति का जो सत्संग करता है ना, जो भागवत सत्र में बैठता है, उसका आभा प्रभा, उसका चाल, उसकी आवाजें बदल जाती हैं। आप जप करते हैं ना, जप करते करते इतनी विनम्रता आ जाती है, इतना धैर्य आ जाता है, जीवन में इतनी शालीनता आ जाती है, जीवन इतना सज जाता है जप के माध्यम से कि हमारे प्रभु भी आकर के झुक जाते हैं उनके सामने। तभी तो कहते हैं कि संत वैष्णव हमारे हृदय है, साधु हृदयम महियम, संत के हृदय में मैं निवास करता हूँ और संत मेरे हृदय में निवास करते हैं। संत जो कहते ना, मैं उसको कभी टालता नहीं हूँ, कभी अवज्ञा नहीं करता हूँ संतों की बात की, ये भगवान की वचन है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में, प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं इस बात को कि यदि आप मेरे से प्रेम करते हो तो पहले मेरे भक्तों से प्रेम करो, मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगा। यू लव मी लव माई डिवोटी, मेरे भक्त से पहले प्रेम करो, मैं खुश हो जाऊंगा, तुम्हें प्रसन्न हो जाऊंगा। और सत्संगी व्यक्ति था, सत्संगी व्यक्ति जाकर के पूछा कि आपने मूर्ति बनाई है? बोले जी हाँ बनाई है। क्या क्या दाम रखे हैं आप? बोले कि एक का दाम है 500 रुपया और एक का दाम है 1,00,000 रुपया। अब ये बात आपको बतानी है। उस सत्संगी व्यक्ति ने क्या किया, उस संत वैष्णव ने किया कि हाथ में रुई लिया, उसको पिरो दिया और पिरो करके एक मूर्ति में कान में धागा डाला और सीधे इधर से डाला और इधर से निकल के बाहर चला गया। उस सत्संगी वैष्णव ने कहा कि ये 500 की है ना? बोले जी। फिर हाथ में धागा लिया, रुई लेकर के फिरोया और एक दूसरे मूर्ति में डाला, अब कान में डाला तो दिमाग में घूमते 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 गर्दन से नीचे उतर गया। बोले 1,00,000 का है ना? बोले हाँ 1,00,000 का। क्या मतलब? जो भगवान के दिव्य कथा सुन करके इधर से बाहर कर देता है वो 500 रुपया का श्रोता है, और जो व्यक्ति कथा सुन करके अपने चित्त में बैठा लेता है वही 1,00,000 का श्रोता है, वो 1,00,000 का श्रोता है। इसीलिए कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चिते थे करिह आज्ञा, अपने हृदय में बैठा लेना गुरु के वचन को, गुरु के वाणी को बैठा लेना। भगवान कहते हैं इस बात को, संत वैष्णव महात्मा जितने हैं हमारे नाम को लेकर के दर्शन के माध्यम से अपने इंद्रियों को शुद्ध करके पवित्र करके अपने हृदय के अंदर में जितनी गंदगी है उसे साफ कर देता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर एक भजन गया है, एक लाइन में आपको मैं सुनाता हूँ।
तुमर हृदय सदा गोविंद विश्राम।
आप सब भी बोल सकते हैं, गायक बैठे हैं बहुत अच्छे अच्छे इसमें।
तुमर हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परम। कहे नाम वैष्णव पदा,
नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं महान आचार्य।
तुमर हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव पदा। प्रति जन्मे करियस चरणे रे धुरी, प्रति जन्मे करियस चरणीर झुली, नरोत्तम कर दया अपना बलि। नरोत्तम कर दया अपना बलि,
एक साथ
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
की सेवा करते रहे आप सब, जो जहां बैठा है वहीं से
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे।
भगवान भी घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। भगवान को भी भक्तों की बड़ी आवश्यकता है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का वृद्धि होने लगता है, अधर्म का बोलबाला जब बढ़ जाता है, धर्म का जब हानि होने लगता है, गलानी होने लगती है, तो भगवान भक्तों के माध्यम से ही आते हैं। यहाँ पर भक्तों की रक्षा करने आते हैं भगवान। तो भगवान भी भटकते रहते हैं, प्रभु भी देखते हैं कि मेरा संत बैठा है। जैसे हमारा मन भटकता है ना, वैसा ही भगवान भी भटकते हैं। आप भगवान के विभूति योग में पढ़िए, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। भाई मन हो तो क्यों भटकता है इतना? फिर इंद्रियों में मन हूँ मैं, नदियों में गंगा हूँ, ऋषियों में नारद हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, मनुष्यों में राजा। अरे न जाने कितने बात बताया प्रभु। तो जैसे हमारा मन भटकता है, वैसे प्रभु भी अपने भक्तों के लिए भटकते हैं। जो जो भक्त कह दे, अरे कहीं कहीं तो लिखा है कि जहाँ जहाँ भक्त उनके पैर रखते हैं ना, वहाँ वहाँ भगवान अपने सर को रखते जाते हैं, सर रख देते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। इसलिए विष्णु के भक्त वैष्णव बनने की कोशिश करना चाहिए हमें। बाहर से नहीं, बाहर से परिवर्तन नहीं करना है, अंदर से परिवर्तन करना है, हृदय को ठीक करना है। भगवान प्रेम करते हैं, भगवान भी भटकते हैं, और भगवान देखते रहते हैं कि कौन सा भक्त, कौन सा ऐसा हमारा भक्त बैठा है जिसका हृदय साफ हो। ढाक करके देखता है, जब किसी के हृदय को देखता है तो कहता है कि भाई यहाँ तो बड़ा ट्रैफिक जाम है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मत्सर भी है, ईर्ष्या भी है, तो उस मकान को छोड़ करके भगवान दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जहाँ देखते हैं कि इसका हृदय बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नीट क्लीन है, बिल्कुल साफ है, तो चुपके से जा करके टेढ़ी टांग वाले हमारे प्रभु श्याम सुंदर जी बैठ जाते हैं। और एक बार यदि भगवान बैठ गए किसी का हृदय में, तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते हैं, बिल्कुल नाम नहीं लेते। तो भी इसीलिए इस संदर्भ में, इस सूत्र में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस भजन को पुष्ट किया है। तुमर हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुमर सदा गोविंद अमर गोविंद कहे नाम वैष्णव परा चाहिए। बताओ, जिनको हमारे प्रभु ने कहा कि ये शरीर मेरा है, इसका मैं हूं, इसके हृदय में मैं हूं, और ये वैष्णव मेरा है, अब इससे ज्यादा और भक्तों को क्या चाहिए? जिसको परमात्मा ने कह दे, जिसको प्रभु ने कह दे कि ये वैष्णव मेरा है, ये संत मेरा है। अम्बरीश के, महात्मा अम्बरीश के जीवन को कोई नष्ट कर सकता है? किसी की ताकत थी? बड़े योगी दुर्वासा जी लगे रह गए, लेकिन भगवान ने उनका कुछ भी नहीं होने दिया, क्योंकि भगवान का जो वचन है, भगवान की जो वाणी है, प्रभु ने जो कहा है, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, मैं इसके हृदय में रहता हूँ, ये मकान मेरा है, अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। जिस शरीर को प्रभु कह दे कि ये मेरा है, उसको कौन तोड़ सकता है? कौन बिगाड़ सकता है उसे, कौन नष्ट कर सकता है, किसी में ताकत नहीं। और यही कहलवाने के लिए ही, यही बात सुनने के लिए ही आप सब निरंतर प्रभु हमारे हो जाएं, हम उनके हो जाएं, बड़ी महिमा है। एक बार वैष्णव के विषय में कथा बता रहे थे पूज्यपाद श्री राधा गोविंद महाराज जी, और उसी बात को दोहरा रहे थे इसी क्लास में बहुत दिन पहले पूज्यपाद श्री लोकनाथ गोस्वामी, संत की महिमा बता रहे थे। कहते थे कि एक बार शिव जी और पार्वती जी रास्ते में जा रहे थे, भगवान शिव का जो वाहन है वो बैल है ना, और जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है, भगवान कृष्ण का जो वाहन है वो गरुड़ है, और गरुड़ जो है वो बेल का प्रतीक है, और ब्रह्मा जी का जो वाहन है वो हंस है, और हंस विवेक का प्रतीक है। अब बैल पर चल रहे थे, पार्वती जी साथ में थी, भगवान शिव ने एक स्थान का दर्शन किया, बड़ा शुद्ध बड़ा पवित्र स्थान था, वहाँ की वातावरण वहाँ की हवा पानी बड़ा शुद्ध था। भगवान शिव अपने वाहन से उतरे और लगे लेटने उस धूल में, अपने को स्नान करा लिया। इसलिए कहते हैं ना, बिना महत पाद रजो अभिषेकम, बिना संत के पाद पद्मों के रज के, बिना तिलक लगाए बिना आप भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। रघुगण से महाराज जट भरत जी ने कहा था इस बात को, बिना महत पाद, महत पाद मतलब महान भक्तों की पाद पद्मों का जो धूल है, उनका जो रज है, जब तक आप माथे में अभिषेक नहीं करते हो, तिलक नहीं लगाते हो, भगवान तुमको नहीं मिलेंगे। ये बात कहा। अब यहां कहते हैं भगवान शिव लगे लेटने, स्नान करने लगे, खूब स्नान किया, रोमांचित हो गया शरीर, अश्रुपात होने लगा, प्रेम उमड़ गया जीवन में। पार्वती जी ने पूछा, क्या हुआ, अभी तो चल रहे थे आप साथ साथ, क्या गड़बड़ी हुई आपको अभी? बोले कि क्या बताऊं देवी, इस जगह को, इस यह जगह, यह भूमि इतना पवित्र हो गया है। बोले क्या बात है? बोले कि 100 साल पहले यहाँ संत लोग रहते थे, वैष्णव लोग, उनको रहने से यह भूमि, यहाँ का रज इतना पवित्र हो गया है, इतना शुद्ध हो गया है कि मुझे रहा नहीं गया, रोमांचित हो गया शरीर। जीवन में कोई पाप हो जाए, झूठ बोलने का पाप हो जाए, और कोई पाप अपराध बन जाए जीवन में, भगवान क्षमा कर सकते हैं, कर देते हैं, लेकिन किसी वैष्णव के चरणों में यदि अपराध बन गया ना, या पाप हो गया ना, तो भगवान कहते कि मेरे हाथ से बाहर की बात है, अब मैं नहीं कर सकता उसको। इसलिए भूल कर भी कभी किसी संत का अपराध नहीं करना चाहिए। यदि कोई संत, कोई वैष्णव, कोई गुरु आपको समझ में नहीं आता है, आप थोड़ा दूरी बना लो, दूर से प्रणाम कर लो, लेकिन जीवन में अपराध ना करो, कभी नहीं करना चाहिए कभी। भगवान शिव आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते जब आगे गए तो फिर बैल से उतर करके लगे लेटने, धूल में लेटते लेटते अपने शरीर को औषित कर लिया, बिल्कुल स्नान कर लिया। पार्वती जी ने पूछा, अब क्या हुआ आपको? बोले कि क्या बताऊं देवी, यहाँ 100 साल के बाद संत वैष्णव लोग आने वाले हैं, वहां तो आके चले गए हैं तब शुद्ध था, अब यहाँ आने वाले हैं, उनको आने से पहले यहाँ की वातावरण पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है। ये आप हम सब, आप सब वैष्णव की महिमा है। आप 3 बजे से उठ करके सभी संत वैष्णव मताएं, आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए लगे हैं, मंगला आरती के माध्यम से, जप के माध्यम से, आपस में दर्श परस के माध्यम से, उनके प्रसाद दिव्य खाने के माध्यम से, उन्हीं के प्रसन्नता के लिए आप हम सब लगे हैं। आप सब बहुत विशेष हैं, आप सब बहुत महान हैं, आप सब वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत धन्यवाद, समय हो गया है। श्री प्रभुपाद जी महाराज की।